प्रातः क्लास चल रहा था 9 जनवरी 1968 मंगलवार को, दूसरे पीच के मध्यांत में बात चल रही थी। परमधाम से जो आत्माएं आती रहती हैं उनकी वृद्धि होती रहती है, जो भी आते हैं धर्म पिताएं उनके फॉलोअर्स की वृद्धि, ये तो बुद्धि से काम लेना पड़ता है ना, कि गुरु नाते की गुरु नानक की जिनको गुरु कहते हैं, अभी बाबा ने हमको बताया कि गुरु तो कोई भी नहीं है, सदगुरु तो एक ही है, तो बाकी क्या हुए। सिख लोग गाते भी हैं, एक सदगुरु निराकार अकाल मूर्त, नानक को तो काल खा गया ना है, तो वो तो भारत के शास्त्रों में एक ही देवता है महादेव, जिसको दिखाया है कालों का काल महाकाल, सारी सृष्टि का बल विनाश हो जाए परंतु सारी सृष्टि का जो बीज है उसका विनाश नहीं होता। उसी के द्वारा सच्चा सदगुरु शिव भगवान आते हैं, भले तुम्हारी ये वाणी सुन कर करके हम लिख भी देवे, वो गुरु कोई भी सदगति दाता नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य गुरु है ना, सबका मन चलाए मन रहता है, मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। जब तक राजयोग के द्वारा मन के ऊपर पूरा कंट्रोल न करे, बाबा ने कहा है ना, बहुत लिखते जाओ कि सदगति दाता सर्व का सदगति दाता एक ही है, कोई भी चंचल मन वाले मनुष्य नहीं हो सकते हैं। जिनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती, सारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन ही चंचल है, और भगवान तो अमन होता है, सदा अमन चैन में रहने वाला। तो कौन सा मनुष्य है जिस मनुष्य के द्वारा भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। गीता में तो अर्जुन को दिखाया है, अब उसे अर्जुन कहो आदम कहो एडम कहो आदिदेव कहो, पुरुषार्थ से बनता है ना ऐसे। तो उस मनुष्य तन में भगवान आते, समझे ना कौन सा मनुष्य तन, और फिर वो मनुष्य है तो मनुष्य ही है ना, चंचल मन वाला है ना, फिर धर्म से समझाया जाता है कि भाई ये किस धर्म का है, कि भाई ब्रह्म की औलाद ब्राह्मण है, है कैसा ब्राह्मण, गुजराती है, जिसे के अज्ञान की रात गुजर गई तो बताना होता है ये फलाने फलाने गुरु हैं, इनके थोड़े ही कहेंगे कि अज्ञान की रात गुजर गई। अज्ञान दुनिया में इनके आने के बाद बढ़ता जाता है या घटता जाता है, है? बढ़ता जाता है, तो ये भी तो होते हैं ना, सब कुछ होते हैं। नंबर वार तुम बच्चों को तो बाप कहते हैं ना कि अपन को आत्मा समझो, क्या अभी न तुम अपन को गुजराती समझो, न हिंदू समझो, न मुसलमान, न सिख वगैरह वगैरह है। बाप तो देखो गीता में भी लिखा हुआ है, बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, इन सब अनेक प्रकार के धर्मों को छोड़ दो। धर्मों को छोड़ेंगे तो धर्म पिताओं को भी छोड़ना पड़े। मामेकम शरणम ब्रज, मुझे एक की शरण में आ जा। कौन मुझे? इसके लिए मुसलमान भी तो बोलते थे ना, वो अभी भी बोलते हैं अल्लाह बंदीन, जो ऊंचे थे ऊंचा भगवंता अल्लाह है, वो अव्वल नंबर की धर्म की स्थापना करने वाला है। अब देखो उन सिखों के पास तो कंगनी भी होती है, है? ये किस बात की कंगनी निशानी है, वो उनको समझाना चाहिए। ये निशानी तुम्हारे पास पहले की है, अभी की बात नहीं है, क्योंकि गुरु नानक तुम्हारे गुरु ने बोला ना, मूत पली थी कपड़ धोती है। सदगुरु आते हैं तो मूत पली थी कपड़ों को धोते हैं। कपड़े किसे कहा जाता है? ये मनुष्य का शरीर ही कपड़ा है ना, आत्मा का कपड़ा है। तो ये कपड़ा इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र का है, चाहे धर्म पिताओं का ही क्यों न हो, ऋषि मुनियों का क्यों न हो, दाढ़ी मूंछ वाले ऋषि मुनि होते हैं ना, सब मूत पलित ही बन पड़े। तो कहते हैं ना, बरोबर आए करके कहते हैं, भले उन धर्म पिताओं ने कुछ कहा नहीं है, ये तो पीछे वाले हैं सिख धर्म के, बाद में आता है ना सिख धर्म, तो उन्होंने बैठ करके ये बनाया है। क्या फिर करा? मूत पलीती कपड़ धोती। अब ये तुम विचार करो, तो जब आए हैं तब तो गुरु नानक जब आए थे तब तो ग्रंथ छोटा था ना, बड़ा ग्रंथ तो नहीं था है? अच्छा, सो भी उनके समय में कोई भी ग्रंथ वगैरह कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक एक को है ना, सभी धर्म पिताओं को अपना अपना धर्म ग्रंथ है, उनके फॉलोअर्स के लिए दिखाया जाता है ना। तो आप बताओ ये ग्रंथ फिर कौन बनाएगा, कौन पढ़ेंगे? तो जब ये बहुत होते हैं तब ये सभी उनके लिए महिमा सब बनाते हैं। पहले किसकी महिमा सुनेंगे, कौन महिमा सुनेंगे, जबकि उनका धर्म पिता होता ही नहीं, उनके पहले किसकी महिमा सुनेंगे, क्या करेंगे? तो धर्म धर्म भी होवे जब भी बहुत होवे ना, तो धर्म पिता के फॉलोअर्स की संख्या बढ़े ना, नहीं तो एक आदमी का धर्म कैसे चल सकता है? तो जब उनसे धर्म पिताओं से मल्टीप्लिकेशन होगी और फिर मल्टीप्लिकेशन होते होते कुछ हजारों लाखों की तादाद में हो जाए, तब उनका वो कुछ है गायन निकले धर्म पिता का बाहर में, और फिर उनका वो शास्त्र वगैरह कुछ बैठ लिखे बना ले। तो ये जितने भी धर्म शास्त्र हुए हैं ना धर्म गुरुओं के धर्म पिताओं के, वो तो बाद में लिखे गए हैं। धर्म पिताओं ने आकर के कोई शास्त्र थोड़े लिखे थे, अरे उन्होंने तो सुनाया था बरबली मुख से कि शास्त्र लिख करके गए, ये तो बहुत बाद में बनाए जाते, पीछे बनाते हैं ना बच्चे। और हरेक धर्म पिता का पीछे बनते हैं धर्म ग्रंथ। अब देखो इनका भी बाबा अभी ज्ञान देते हैं ना, देखो कभी जा करके उसका बनते हैं ये ग्रंथ है और ये शास्त्र, नहीं तो सत्य बाप आकर के सत्य चित्त आनंद जिन्हें कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है ना, तो सत्य बाप आकर के जो सतयुग की नई दुनिया बनाते हैं उसमें तो कोई शास्त्र नहीं होता है। वो जो भी कलयुग में होते हैं ढेर के ढेर शास्त्र, तो वो सतयुग में नहीं होते हैं, शास्त्रों की वहां बात ही नहीं। तो ये बात अभी कलयुग में समझानी पड़ती है। परंतु ये समझाने से भी पहले पहले वन गॉड इज वन है, नहीं सर्वव्यापी है, मेरे में है तेरे में है नहीं, ये समझाना होता है कि बाप को याद करो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा है? कौन सी बाप को याद करो है? उस स्वरूप को याद करो जो साकारी सो निराकारी, निराकारी आत्मा आत्माओं का बाप और साकारी मनुष्य सृष्टि का बाप, एक ही शरीर के द्वारा दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विकर्म जो विपरीत कर्म किए ना, कौन से विपरीत कर्म, कि भगवान ने आकर के जो पढ़ाई पढ़ाई थी वो पढ़ाई न पढ़ करके उल्टे ही कर्म करने लग पड़े, ढेर के ढेर धर्म पिताओं की मत पर मन मत पर, और फिर सदैव करते रहे तो क्या पाएगा, विपरीत कर्म करेगा औरों की मत पर कर्म करता रहेगा, जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप है आत्माओं का बाप है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, उसकी मत पर नहीं करेगा तो रिजल्ट क्या होगा, एक दिन सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो देखो अभी देख लो ये एटम बम बने हुए है ना, शास्त्रों में लिखा है ना क्या कि यादवों के बुद्ध रूपी पेट में से मिसाइल में है मूसल निकले। हाँ तो देखो अभी ये हो रहा है ना विनाश होने वाला है, तो इन बातों का विनाश की बातों का भी भाषण करना तो इसमें हर्जा नहीं है, तो भाषण करते रहो है, क्योंकि ये इतनी खतरनाक एटमिक एनर्जी बनी हुई है, जो कहते हैं बनाने वाले कि इस तरह की अनेकों दुनिया का विनाश हो सकता है। तो ये विनाश तो आने वाला ही है। ऐसे नहीं कि ये एटम बम खिलौने बना के रखे हैं घर की सजावट के लिए, है ऐसे तो नहीं। तो वहीं जाकर के तुम किसको कहते हो, है उनके सामने ही जाकर के बताओ, पूछो उनसे कि सर्वव्यापी तुम किसको कहते हो, क्या उसी को सर्वव्यापी कहते हो जिसको अकाल मूर्त करके महिमा करते हो। कैसी मूर्त? मूर्त बने साकार, अमूर्त बने निराकार। ऐसी मूर्त जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता, काल से परे है। फिर वो अकाल मूर्त वो तो बाप ठहरा ना बच्चे, वो एक ही बाप है, है व्यक्त रूप में भी है साकार रूप में भी है, साकारी सो निराकारी है, निराकार आत्माओं का भी बाप है, साकार शरीरधारी मनुष्यों का भी बाप है। तो वो बाप के जो बच्चे हैं हैं तो सब आत्मा है ना, तो हम सो ही आत्माएं हैं, जैसे हम भी अकाल मूर्त हैं, हम आत्माओं को काल नहीं खाता है, देह को काल खाता है या आत्मा को खाता है, शरीर को काल खाता है। तो हम आत्मा का भी ये अकाल तख्त है क्या, ये भ्रकुटी का मध्य है, ये बरीकुरी कूटी है, कौन सी है जिसे शास्त्रों में और चित्रों में भी दिखाया है, त्रिनेत्री है, वो है त्रिमूर्ति हाउस, हाउस कह दो कुटी कह दो कुछ भी कह दो। तो वहां हम बैठे रहते हैं, कौन आत्मा की शरीर है, आत्माएं बैठी रहती है, और हम आत्माएं एक शरीर छोड़ करके एक तख्त छोड़ करके दूसरे तख्त पर बैठते हैं। ऐसे 84 तख्त पर 84 जन्मों में बैठते हैं, और वो 84 को तो मानते ही है ना, हाँ उन्होंने 84 लाख योनियों में डाल दिया है मनुष्यों को। अरे आम का बीज होगा तो आम का ही दरख्त पैदा करेगा ना, नीम का होगा तो नीम का पैदा करेगा। तो ये मनुष्यों का जो बीज है, महादेव कहो आदिदेव कहो आदम कहो, उस बीज से ये सृष्टि में क्या पैदा होंगे है? अरे मनुष्य ही पैदा होंगे कि हाथी घोड़े कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, मनुष्य से मनुष्य पैदा होंगे। और भगवान आएगा तो मनुष्यों को समझाएगा, जिनको मन बुद्धि होती है, मन बुद्धि से ही समझा जा सकता है ना, कि कीड़े मकोड़ों को पशु पक्षियों को समझाएगा। सभी मानते हैं ये जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या, कि वो एक ही मनुष्य सृष्टि का बीज है अकाल मूर्त, है जिसका गीता में भी नाम तो है ना। हाँ तो अभी तो देखते हो कि सारी दुनिया पुरानी हो गई है और इस पुरानी दुनिया में बहुत हंगामा हो गया है। अभी देखो लड़ाई वगैरह कितनी है, तो कोई ऐसे तो नहीं है कि जब नई दुनिया होती है तो लड़ाई झगड़ा मारा मारी होती है। अरे नई दुनिया सतयुग में है, मारामारी हो सकती है। राम कृष्ण की दुनिया का कितना कायन है, वहां एक धर्म बच्ची, तो एक धर्म होगा तो कैसे लड़ाई होगी। अनेक धर्म होंगे, अनेक धर्म पिताएं होंगे, उनके अनेक तरह के फॉलोअर्स होंगे, तो आपस में लड़ेंगे। मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म पिता बड़ा, तुम तो उसको मानो। मारामारी चलती रहती। तो सतयुग में तो जो सत्य बाप का स्थापन किया हुआ युग है, उसमें तो किसी की भी लड़ाई हो न सके। और सर सतयुग के तो कोई भी दुश्मन नहीं है। सतयुग त्रेता जो स्वर्ग की दुनिया है, जहां सुखी सुख होता है, कोई धर्म वाले उसके दुश्मन है क्या? हाँ, जो धर्म है ही नहीं नास्तिक धर्म, उसकी बात छोड़ दो। बाकी जो धर्म है, नंबर वार धर्म है ना, हाँ, वो सब स्वर्ग को मानते तो है ना, गॉडफादर को भी मानते हैं और स्वर्ग को भी मानते हैं, कहते भी है हेवनली गॉडफादर। अल्लाह मियां ने जन्नत बनाई, तो जन्नत को हेवन को मानते तो है ना, तो हेवन के दुश्मन तो कोई नहीं है। भाई ये बाबा हमारा तो जिनको ये ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान के द्वारा, राजयोग के ज्ञान के द्वारा सारे विश्व की बादशाही दे देते। तो देखो जब तुम विश्व के मालिक बनते हो, और बनते ही हो, तो उनकी विश्व की बादशाही कौन जीत सकता है? उनकी दी हुई विश्व की बादशाही को कोई जीत ही नहीं सकता। कोई धर्म वाला, कोई धर्म का धर्म पिता अगर प्रत्यक्ष हो जाए, जो कहते हैं वो दूसरे धर्म पिता कहते हैं कि हमारे पैगंबर जो हैं वो कयामत में प्रत्यक्ष होंगे, तो कयामत में प्रत्यक्ष होंगे तो क्या वो जीतेंगे उसको, अकाल मूर्त को है? उसके ऊपर चढ़ाई करके जीतेंगे? अरे नहीं, वो तो ऐसी विश्व की बादशाही स्थापन करता है जिससे कि विश्व की बादशाही को कोई भी जीत नहीं सकता, कोई भी चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। दूसरे धर्म चढ़ाई करते हैं किनके ऊपर? जो देवी देवता धर्म के होते हैं ना, उनके ऊपर चढ़ाई करते हैं ना, चढ़ाई करके कन्वर्ट कर लेते हैं ना, बौद्धियों को कन्वर्ट किया ना, हिंदुओं को कन्वर्ट करते ही रहते, हिस्ट्री बताती है ना। तो ये दूसरे दूसरे धर्म वाले चढ़ाई करते रहते हैं। सो भी विचार करो, अच्छा सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, और पीछे तो उनके फिर आते हैं वैश्यवंशी, विशेष कैसे विशेष है, किसे विषय कहा जाता है? पराई स्त्री पर पुरुष को भोग करना उसकी इंद्रियों के द्वारा वो है विष। ऐसा करने से दुनिया गड्ढे में जाती है, आत्मा पतित बनती है। तो देखो ये वैश्य वंशी आते हैं, ये विशेष धर्म स्थापन हो जाते हैं। तो ऐसे विशेष धर्म स्थापन होते होते है सारी दुनिया में विषय विकार बढ़ते जाते हैं कि घटते हैं? बढ़ते ही जाते हैं। पीछे तो बाप आते हैं, तो सद्धर्म जब स्थापन हो बाप के द्वारा, सत्य बाप के द्वारा, तो फिर वृद्धि को पावे है। और फिर जब बहुत वृद्धि को पाते हैं तब लड़ाई की बात निकलती है, नहीं तो लड़ाई की बात निकलती नहीं है। है देखो शूटिंग पीरियड में ओम मंडली पहले पहले निकली ना, ओम मंडली का अस्तित्व जब तक रहा तब तक कोई लड़ाई झगड़ा हुआ सिंध हैदराबाद में नहीं हुआ ना। फिर बाद में क्या हुआ? फिर तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय निकला, ढेर के ढेर फॉलोअर्स निकल पड़े है? तो फिर लड़ाई होती है। अब ये इस्लामियों में देखो कितने हो गए पहले पहले शुरुआत में, इतनी वृद्धि उनमें कैसे हो गई है? उन्होंने क्या किया? उन्होंने वृद्धि करने के लिए विचार ऐसा फैलाया कि न बहन छोड़ी न बेटी छोड़ी। भारत में हिस्ट्री में देखो ना, मुगल बादशाहों ने अपनी बेटियों की शादी की किसी के साथ है? अपनी गोद में लेकर के बैठे रहते थे। विकारी हैं, इंद्रियों से विकारी हैं कि निर्विकारी हैं? तो देखो ऐसे व्यभिचारी बनते हैं, शुरुआत से ही व्यभिचारी बन जाते हैं। तो देखो ये बात हिस्ट्री में आती है कि इस्लामियों ने है बहनों से ही शादी करना शुरू कर दिया। पहले तो बिल्कुल थोड़े थे एकदम, पहले कब? जब भारत में इब्राहिम वाली आत्मा आई और उनके फॉलोअर्स आए और उन्होंने व्यभिचार दोष शुरू किया आंखों से लेकर के और इन भ्रष्ट इंद्रियों तक भी, तो फिर ये जो भारत के आदि सनातन धर्म के थे ना, सनातनी पक्के, उन्होंने उनको भगा दिया, विरोध कर दिए, लड़ाई हो गई। और भगाया तो कहां तक खदेड़ते चले गए? अरब देशों तक चले गए। फिर वहां तो बहुत थोड़े थे ना, तो ये संख्या कैसे बढ़ गई है? आपस में ही भाई बहनों में शादी करना शुरू कर दिया। अब तुम्हारा तो फिर भी तो बहुत होते हैं ना सतयुग में। क्या सतयुग में होते तो हैं लेकिन बहुत होते कि नहीं? संख्या बढ़ती है कि नहीं? सतयुग त्रेता में संख्या बढ़ती है। सतयुग भगवान का स्थापन किया हुआ युग है, परंतु वहां बहुत कैसे हो जाते हैं है? क्योंकि ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते हैं, भ्रष्ट इंद्रियों का सुख, मूत पलित इंद्रियों का सुख नहीं भोगते हैं। तो ज्ञान इंद्रियों के सुख से भी सुखी संतान पैदा होगी या दुखदायी संतान पैदा होगी? सुखी। तो अब ये तुम्हारा धर्म तो यहां स्थापन होता है, ऐसे नहीं सत्युग त्रेता में स्थापन होता है। यहां माने कलयुग के अंत, और जब सत्युग का आदि होने वाला होता है तो संगम में, उसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम। और उनका धर्म उस समय में स्थापन होता है। किस समय में है? जब परंपरा चलती है भ्रष्ट इंद्रियों की, मूतपलीति इंद्रियों की संतान पैदा करने का, तब उनके धर्म स्थापन होते हैं, उन धर्म पिताओं के, मनुष्य गुरुओं के। तो फिर वो एक दो की पिछाड़ी आते जाएंगे है? और जिनकी पिछाड़ी आए, माँ बाप की पिछाड़ी बच्चे आते हैं ना, तो जैसे जैसे माँ बाप को अनुभव करेंगे वैसे वैसे खुद बच्चे भी वही कम कर्म करेंगे कि नहीं करते हैं। तो बच्ची इन बातों की बड़ी समझ चाहिए और इन बातों की धारणा, यानी वो जो पत्थर बुद्धि बन चुके हैं भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगते भोगते उनकी बुद्धि में से बात एकदम लोप हो गई। जैसे कसाई के घर में बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनकी बुद्धि में कोई आता है कि गाय काटना पाप है? आता है नहीं? वो तो समझते हैं हम तो लोगों का पेट भरते हैं, है? गाय काट के जो मांस देते हैं ना, तो पेट चमड़ी देते हैं, मांस देते हैं, हड्डियां देते हैं, तो उसे खादवाद बनती है, तो हम तो कल्याण करते हैं। उनकी बुद्धि में ये नहीं आएगा कि ये कोई पाप कर्म है। क्यों? क्योंकि माँ बाप के घर में, ऐसे माँ बाप के घर में पैदा ही हुए, उनसे संस्कार बच्चे लेते हैं, तो संस्कारों में वो बात समाई जाती है। तो ये पत्थर बुद्धि जो है ना, विकारी सुख भोगने वाले विकारी इंद्रियों का, जो बोल नहीं सकते हैं, है? तो उसकी तो ये धारणा ही नहीं हो सकती है। ये बाप जो बातें बताते हैं है, वो पवित्रता की धारणा उनमें हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपने धर्म के पक्के रहते हैं। वो तो बाबा ने समझाया ना। अब सब धर्मों के फॉलोअर्स नंबर वार तो होना ही चाहिए ना, एक जैसे होंगे। धर्म पिताएं अलग अलग तो उनके फॉलोअर्स भी अलग अलग, तो उनका भी विचारों का कोई दोष थोड़े ही है, है? अब वो ड्रामा के प्लेन अनुसार वो पढ़ ही नहीं सकते हैं। जो ऊंचे थे ऊंचा भगवंत भगवान बाप आकर पढ़ाते हैं, वो पढ़ाई अभी नहीं पढ़ सकते, नहीं न पढ़ सकते हैं और न किसी को समझा सकते हैं। भले वो कितने भी मत्था मारे, क्या कि ये पवित्रता क्या चीज होती है, असली श्रेष्ठ इंद्रियों से भी पैदाइश हो सकती है, ये उनकी बुद्धि में बैठे गई नहीं। कितना भी मत्था मारे, बाप कहते हैं कि नहीं, जो नहीं समझा सकते हैं उनका तो पद इस दुनिया में बहुत कम है। 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र है ना इस दुनिया में, मनुष्य आत्मा, तो नंबर वार पद पाने वाली होंगी, नंबर वार सुख पाने वाली होंगी। ऊंचे पद वाले ज्यादा सुखी और नीचे पद वाले उतने सुखी हो सकते हैं क्या? नहीं। तो वो कभी भी नहीं समझा सकेंगे। कि भाई है देवता बनना है और पवित्र रहना है, जो पवित्र इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियां उनका सुख लेना है, भ्रष्ट इंद्रियों का सुख नहीं लेना। ये बात उनकी बुद्धि में एकदम नहीं बैठी। ओम शांति।